ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 20 फरवरी 2022 के लिए है। विषय मन स्वर्णपथ यकूब। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घाटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। उत्तरदायी ध्यान अयूब। परंतु बुद्धि कहां से मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है? उसका मूल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन अलोक में वो कहीं नहीं मिलती। अथा सागर कहता है वो मुझ में नहीं, और समंदर भी कहता है वो मेरे पास नहीं। चोखे सोने से वो मूल लिया नहीं जाता, और ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। फिर बुद्धि कहाँ से मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ? परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे, और परवेनता और समझ के लिए अति उत्तम से पुकारे, और उसको चांदी के नियम ढूंढे और गुप्त दान के सम्माने उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती हैं। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। वो न्याय के पाथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है। राजे। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। जब बौन में यहोवा ने रात को सपने के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर अपनी बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने आप को तेरे सामुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी बराजने वाला एक पुत्र दिया था, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब ऐ मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। तू अपने दास को अपनी प्रजा के न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी उतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तूने दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, बल्कि समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कभी कोई हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। यशाया। तब यशी के ठोंठ में से एक डाली फूंट निकलेगी और उसकी जड़ में एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय न करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धाम से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सौंते से मारेगा और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धाम और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। मत्ती। हेरोदिस राजा के दिनों में जब यहोवा के बैतुलहम में यीशु का जन्म हुआ। लूका। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फिसा के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। और 3 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए उसे पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वो सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने लगा और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या यह दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बनाना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। करंथियों। जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की घोर बातें भी जांचता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी हैं। फिलिपियों। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दिव्य विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु यह है कि ईश्वर आत्मा संपूर्ण है, और ना ही कोई अन्य शक्ति है और ना ही मन है। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा भगवान ही सबसे अच्छा है। दिव्य तत्व मीमांसा, जैसा कि आध्यात्मिक समझ से पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभी कुछ मन है, और वो मन ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्गीय, अर्थात सभी शक्ति, सभी उपास्थिति, सभी विज्ञान। इसलिए सभी वास्तव में मन की अभिव्यक्ति है। मन, केवल मैं या हम, एकमात्र आत्मा, जीवन, दिव्य सिद्धांत, पदार्थ, जीवन, सत्य, प्रेम, एक ईश्वर वो नहीं जो मनुष्य में है लेकिन दिव्य सिद्धांत या ईश्वर, जिसका मनुष्य पूर्ण और परिपूर्ण अभिव्यक्ति है। देवता जो रेखानत करते हैं लेकिन रेखानत किए नहीं जाते। विज्ञान में ये कभी नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य का अपना मन है ईश्वर से अलग, जो कि संपूर्ण मन है। प्रश्न, क्या मस्तिष्क सोचता है और क्या नसें महसूस करती हैं और क्या पदार्थ में बुद्धि है? उत्तर, नहीं, अगर भगवान सच्चा है और नश्वर आदमी झूठा है तो नहीं। जब पदार्थ बुद्धिमान नहीं है और मस्तिष्क के हिस्से सोच नहीं सकते हैं तो बुद्धि कैसे रह सकती है? पदार्थ मन के कार्य नहीं कर सकता। त्रुति कहती है, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन ये विश्वास नश्वर है और वास्तविक से बहुत दूर है। शुरू से अंत तक जो कुछ भी नश्वर है वो भावतिक मानवीय मान्यताओं से बना है और कुछ नहीं है। ईश्वर बुद्धि है, क्या हम उस अनंत मन को सूचित कर सकते हैं जो वो पहले से ही जानता है? क्या हम पूर्णता को बदलने की उम्मीद करते हैं? वास्तविक मनुष्य का प्रतीक कार्य ईश्वराय मन द्वारा संचालित होता है। मानव में मन मारने या ठीक करने की कोई शक्ति नहीं है और इसका भगवान के आदमी पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो दिव्य मन जिसने मनुष्य को बनाया, वो अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है। मानव मन भगवान के विपरीत है और इसे बंद करना चाहिए, जैसा कि संत पौलुस ने घोषित किया है। वो सब जो वास्तव में मौजूद है वो दिव्य मन और उसका विचार है, और इस मन में संपूर्ण पुरानी समान जैसा पूर्ण और शाश्वत पाया जाता है। सीधे और संकीर्ण तरीके से इस तथ्य को देखना और स्वीकार करना है, उस शक्ति से उपजें और सच्चाई के अग्रणी का पालन करें। ये मनुष्य प्रशासन करने के लिए आध्यात्मिक भावना का प्रतंत है। भावतिक गलत मानव शरीर पर और उसके माध्यम से हानिकारक रूप से कार्य करता है। इच्छा शक्ति सभी बुराइयों में सक्षम है। वो कभी बीमारों को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधर्मियों की प्रार्थना है, जबकि भावनाओं का अभ्यास आशा, विश्वास, प्रेम धर्मियों की प्रार्थना है। इंद्रियों की बजाय विज्ञान द्वारा शासित ये प्रार्थना बीमारों को ठीक करती है। हमारे मास्टर के कहने ने उन्हें रबी के विद्वदान धर्म शास्त्र से अलग कर दिया कि मैं और मेरे पिता एक हैं। भगवान के बारे में उनकी बेहतर समझ उनके लिए एक प्रतिघात थी। वो एकमान को जानता था और किसी अन्य के लिए कोई दावा नहीं करता था। वो जानता था कि शरीर के बदले अहंकार मन था, और वो पदार्थ पाप और बुराई मन नहीं था। और इस दिव्य विज्ञान के बारे में उनकी समझ ने उन्हें अमर का आधार बना दिया था। ये समझ के अहंकार मन है और ये के एक मन या बुद्धि है, एक बार में नश्वर अर्थ की त्रुटियों को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामान जैसे पूर्ण बनाती है। ये तंत्रिकाओं, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक के बजाय नौकर बनाता है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है तो उसका शरीर हमेशा की जिंदगी और सच्चाई और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। मानव मन जो इस आध्यात्मिक समझ के साथ जुड़ा हुआ है अधिक लोचादार हो जाता है, अधिक धीरज रखने में सक्षम हो जाता है, कुछ हद तक खुद से बच जाता है और कम प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। मनुष्य की व्यक्त क्षमताओं और भावनाओं को विकसित करने के विज्ञान का ज्ञान ये वातावरण का विस्तार करता है, जिससे नश्वर व्यापिक और उच्च क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करता है। ये विचारक को अंतर्दृष्टि और दृष्टिकों को अपनी मूल हवा में उठाता है। जैसे ही नश्वर इस भ्रम को छोड़ देते हैं कि एक से अधिक मन है, एक से अधिक ईश्वर हैं, ईश्वर की समानता में मनुष्य प्रकट होगा और ये शाश्वत मनुष्य उस समानता में कोई भावतिक तत्व शामिल नहीं करेगा। एक सामग्री के रूप में एक सिद्धांतिक जीवन आधार को अस्तित्व की गलत धारणा के रूप में पाया जाता है। मनुष्य का आध्यात्मिक और दिव्य सिद्धांत मानव विचार पर आधारित होता है, और ये वहाँ था जहाँ युवा बच्चा था, और हमें इसी की ओर ले जाता है, यहाँ तक कि एक नए जन्म के लिए भी पुराना विचार जीवन के आध्यात्मिक बोध और जिसमें जीवन शामिल है। मानव विचार को स्वयं भावतिकता और बंधन से मुक्त करना होगा। उसे अब सर, हृदय या फेफड़ों से नहीं पूछना चाहिए, जीवन के लिए मनुष्य की संभावनाएं क्या हैं। मन असहाय नहीं है, बुद्धि के समक्ष बुद्धिमत्ता मूक नहीं है। जब मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होता है, सभी चीजों को समझने वाला वर्तमान मन मनुष्य जानता है कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। उस जीवित सत्य को समझने का एकमात्र मार्ग जो बीमार को उपचार देता है, ईश्वरीय मन के विज्ञान में पाया जाता है, जैसा कि यीशु मसीह ने सिखाया और प्रदर्शित किया है। एक ईश्वर एक मन उस शक्ति को प्रकट करता है जो बीमारों को ठीक करती है और पवित्र शास्त्र की इन बातों को पूरा करती है। मैं तुम्हारा ठीक करने वाला यहोवा हूँ तथा मुझे छुड़ौती मिली है। जब दिव्य उपदेशों को समझा जाता है तो वो फेलोशिप की नींव को उजागर करते हैं, जिसमें एक मन दूसरे के साथ युद्ध में नहीं है, लेकिन सभी के पास एक आत्मा भगवान एक बुद्धिमान स्रोत है, जो कि अंजलि कमांड के अनुसार है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मनुष्य और उसके निर्माता का संबंध ईश्वरीय विज्ञान में है और वास्तविक चेतना केवल ईश्वर की बातों के प्रति ही संज्ञान है। मनुष्य अपने निर्माता द्वारा शासित, जिसके पास कोई अन्य मन नहीं है, अंजील के कठान पर लगाया गया है कि सब कुछ उसी दिव्य कठान के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मार्बल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।